SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को ईद मुबारक के साथ नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। आज भारत में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई जानी मानी हस्तियों ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ईद की मुबारकबाद देते हुए लिखा, ईश्वर करे कि यह विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे, सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। G7 देशों के शिखर सम्मेलन के फौरन बाद स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न शहर में हुए यूक्रेन संकट पर शांति शिखर सम्मेलन से संबंधित संयुक्त विज्ञप्ति पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। भारत के अलावा हस्ताक्षर न करने वाले देशों में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम पवन कपूर ने यूक्रेन संकट पर शांति शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि इस तरह की शांति के लिए सभी हितधारकों का एक साथ लाना और संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के बीच ईमानदारी और व्यावहारिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आपको बता दें कि 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही चर्चा में दूसरा मुख्य पक्ष रूस इस शिखर सम्मेलन से गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से हुई बातचीत के अगले दिन ही भारत ने अपना प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड भेजा था, जहां राष्ट्रपति वियोला एमहर्ट की अगुवाई में यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से रक्षा, परमाणु ऊर्जा, स्पेस सेक्टर, क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और मेक इन इंडिया मुद्दों पर वार्ता की। दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और खेल में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया और आगामी AI शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में अपने घनिष्ठ सहयोग पर चर्चा की। दोनों की मेज़बानी 2025 में फ्रांस द्वारा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी हाथ मिलाया। पिछले साल भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता पर ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह दोनों प्रधानमंत्रियों की पहली मुलाकात थी। भारत में चुनाव खत्म हुए कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क के एक बयान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM एक बार फिर संदेहों के घेरे में आ गई है। श्री मस्क ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़त्म करने की वकालत करते हुए लिखा था कि मनुष्य या AI द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। जवाब में पिछली भाजपा सरकार में IT मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय EVM का बचाव करते हुए एक्स पर लिखा कि यह कहना कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता एक स्वीपिंग जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। भारतीय EVM कस्टम डिजाइंड व सुरक्षित हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं, न ब्लूटूथ से, न वाईफाई से और न ही इंटरनेट से। लेकिन रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलॉन मस्क के बयान को मजबूती देते हुए एक्स पर एक खबर साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से 48 वोटों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले शिवसेना एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार रविंद्र वायकर EVM से जुड़े फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। श्री गांधी ने लिखा कि भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर हुई मतगणना को लेकर एक्स पर कहा कि यह उच्चतम स्तर पर धोखाधड़ी है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन सो रहा है। हालांकि इस विवाद पर चुनाव आयोग की अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने एक प्रेस वार्ता कर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अखबार को नोटिस जारी करने की बात भी कही।
ये ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो आधारहीन न्यूज है विदाउट एनी वेरिफिकेशन, जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है रिजल्ट बटन, वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है। और वो पोल डे को जब ईवीएम सील होता है तब तो पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं काफी, और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन के अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। सो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज।
लेकिन साथ ही इस मामले में रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर और एनकोर सिस्टम पर वोटिंग डाटा अपलोड करने वाले ऑपरेटर दिनेश गुरव के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, जिसकी वजह से EVM को लेकर संदेह और भी गहरा गया है। विपक्ष इस मामले को उच्च न्यायालय ले जाने पर विचार कर रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर टिकी हैं, जिसके बारे में 26 जून को तय होना है। कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी दल सर्वसम्मति से स्पीकर चुनने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग भी रखी है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत का कहना है कि अगर तेलुगुदेशम पार्टी स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है तो इंडिया गठबंधन उसका साथ देगा।
तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रा बाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा।
गर्मी की मार ने समूचे भारत को बेहाल कर रखा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा लगातार 44 से 48 डिग्री सेल्सियस के दरमियान मंडरा रहा है। लू लगकर मरने वालों की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है। यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को भी लू की मार झेलनी पड़ रही है। अत्यधिक गर्मी की वजह से पहाड़ी राज्यों खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जंगल भी आग की चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा बिनसर क्षेत्र में लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान 4 वन कर्मियों की जलने की वजह से मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना का संज्ञान लेते हुए चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ समेत 3 आला अधिकारियों को सस्पेंड किया।
एम्बुलेंस वहां पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए, चारों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छे से अच्छा जो इलाज है उनके लिए हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आए, अपने घरों पर जाएं। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया है, CCF कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और DFO अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें।
तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।